ग्राहक जुड़े हुए थे, दूर दूर से बाल्टी से पानी आ रहा था, महाप्रभु खुद रगड़ रहे थे और महाप्रभु ने सब भक्तों को कहा था मैल इकट्ठा करने के लिए। तो मैल जब इकट्ठा करते थे भक्त, तो महाप्रभु जाकर देखते थे हर भक्त के पास कितनी मैल उसने इकट्ठी की है, और अगर किसी ने कम गंध इकट्ठा किया था तो महाप्रभु उसे कहते थे ज्यादा अच्छी तरह करो, और जो भक्त ज्यादा मैल इकट्ठा करते थे उन्हें कहते थे इनको इनको शिक्षा दो और सफाई अच्छी तरह कैसे करने के लिए। तो सफाई के विषय में भी आप देखते हो कि महाप्रभु देख रहे थे कौन ज्यादा गंध इकट्ठा करता है कौन कम। भक्ति सिद्धांत जी ने इस लीला के संबंध में कहा है कि इस लीला का असली संदेश है कि हमें हमारे हृदय की मैल को दूर करना है, और हृदय की मैल कैसे दूर होगी महामंत्र के उच्चारण के द्वारा। तो महाप्रभु ने कहा जाओ घर घर प्रचार करो और शाम को लौटकर मुझे संदेश दो कितना प्रचार किया। जब प्रभुपाद जी पृथ्वी पर थे और प्रचारक भक्त बाहर जाते थे, जब वो शाम को आते थे प्रभुपाद जी को मिलने के लिए, तो प्रभुपाद जी पूछते थे प्रचार कैसे हुआ। और उन दिनों में अगर कोई एक या दो मेंबर भी बना के आता था प्रभुपाद जी बड़े खुश होते थे। तो उसी विधि के अनुसार इस्कॉन के मंदिरों में हम लोग रोज सुबह पिछले दिन का प्रचार का स्कोर पढ़कर भगवान को सुनाते हैं, है ना। महाप्रभु ने कहा मुझे आकर रिपोर्ट दो कैसा प्रचार हो रहा है, तो रोज सुबह आप सुनते हो कि पढ़ा जाता है कि इस भक्त ने कितना प्रचार किया। तो ये महाप्रभु जी की शिक्षा के आधार पर है चैतन्य भक्त में। तो महाप्रभु ने आगे क्या कहा, अगर कोई ये संदेश को स्वीकार नहीं करेगा तो मैं सुदर्शन चक्र का उपयोग करूंगा। क्या वो आप लोग नहीं कर सकते, केवल भगवान ही सुदर्शन चक्र का उपयोग कर सकते हो। तो महाप्रभु ने इस प्रकार अपने भक्तों को आदेश दिया। तो महाप्रभु के आदेश को स्वीकार करके नित्यानंद हरिदास गए घर घर प्रचार करने के लिए। उन्होंने लोगों से क्या कहा, कृष्णा प्राण कृष्णा धन कृष्णा से जीवनाम एना कृष्णा बोले भाई ऐ एका मना। कृष्णा प्राण, कृष्णा आपका प्राण है। असली प्राण कौन है, भगवान। कृष्णा धाना, कृष्णा असली धन है। हम सोचते हैं कि असली धन है बैंक बैलेंस वगैरह, पर नित्यानंद हरिदास ने क्या कहा, कृष्णा असली धन है। तो आप लोग जो सेवा करते हो आपको भूलना नहीं चाहिए, ये है असली धन, भगवान का नाम ये है असली धन, भगवान की सेवा ये है असली धन। जो भौतिक धन जिसके पीछे पूरा समाज मोहित है, ये असली धन है क्या, है आपके साथ जाएगा नहीं, आपका स्विस बैंक अकाउंट जाएगा नहीं, पर ये जो हरि नाम का अकाउंट है वो सा जाएगा। तो नित्यानंद रामाचार्य हरिदास ठाकुर ने क्या कहा, कृष्णा प्राण कृष्णा धन कृष्णा से ही जीवन, कृष्णा ही तुम्हारा असली जीवन है। ओ भाई तुम कृष्णा का नाम लो बड़े ध्यान से। तो ये है भक्तों का भाव, घर घर जाकर लोगों को ये सूचना देना, कृष्णा प्राण तुम्हारा प्राण कृष्णा है, कृष्णा धन कृष्णा से ही जीवन है, ये है तुम्हारा असली धन। तो इस प्रकार दोनों नित्यानंद और हरिदास ठाकुर घर घर जा रहे थे, घर घर, जैसे आज के वातावरण में हमारे कई प्रचारक घर घर जाते हैं प्रचार करने के लिए, नित्यानंद और नामाचार्य भी घर घर जा रहे थे. दोनों ने सन्यासियों के वस्त्र पहने थे और जब वो घर घर जाते थे लोग उनका स्वागत करते थे और कहते थे हमारा क्या सौभाग्य है सन्यासी महात्मा आ गए हैं हमारे घर में. और घर घर जाकर क्या कहा जा रहा था, नित्यानंद हरिदास भले ए भिक्षा बोलो कृष्णा भाजो कृष्णा करो कृष्णा सिखा. उन्होंने सबके घर गए और कहा हम आपसे भीख मांगना चाहते हैं. क्या भीख? आप कृपा करके बोलो कृष्णा. बोलो कृष्णा का अर्थ क्या है? कृष्णा का नाम लो. भजन कृपाजो कृष्णा, कृष्णा की उपासना करो. ऐसे भगवान आचर्य विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं जिनकी हम उपासना करते हैं. आगे करो कृष्णा शिक्षा, कृष्णा की शिक्षा को अपनाओ. कहाँ है यह शिक्षा? गीता भगवत में. चैतन्य चरितमृत में आप एक कथा पढ़ते हो वासुदेव वासुदेव विप्र की. वासुदेव विप्र महाप्रभु के बहुत ही ऊंचे कोटि के भक्त है. उन्हें कोढ़ की बीमारी थी, लेप्रेसी, और उनका पूरा शरीर फुंसियों से भरा हुआ था और हर फुंसी में पस थी. उनके शरीर से इतनी बदबू आती थी कि कोई उनके निकट भी नहीं आता था. उनका पूरा शरीर कीड़ों से भरा हुआ था, कीड़ों से. और जब कोई कीड़ा नीचे गिरता था तो उसे उठाकर जोड़ देते थे अपने शरीर के साथ. तो वासुदेव विप्र को पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं दक्षिण भारत की यात्रा में, तो वो गए कुर्मा ब्राह्मण के घर में जहां महाप्रभु निवास कर रहे थे. जब वहां पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि महाप्रभु निकल चुके हैं अपनी यात्रा में, तो बेहोश हो गए शोक में. पर महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान. भगवान है अंतर्यामी. तो महाप्रभु लौटे और महाप्रभु ने उन्हें गले लगाया. जब गले लगाया तो जो उनकी खोड़ की बीमारी थी तुरंत समाप्त हो गई और वो खूबसूरत युवक बन गए. तो उनके मन में ये भय प्रकट हुआ, अब मैं इतना खूबसूरत बन गया हूं कहीं मैं घमंडी नहीं बन जाऊं. क्योंकि भौतिक समाज में आप देखते हो अगर कोई खूबसूरत है तो घमंडित हो जाता है, धनी है तो भी घमंडित हो जाता है, भौतिक शिक्षा प्राप्त की है तो भी घमंडित हो जाता है. तो सबसे पहले तो जब उनका शरीर खूबसूरत युवक का शरीर बन गया, उन्होंने उन श्लोकों की रचना की जिनकी रचना सुदामा ब्राह्मण ने की है दसवें स्कंद में. सुदामा ब्राह्मण गए थे भगवान को मिलने द्वारका में, और जब घर से निकले तो क्या ले गए थे? थोड़ा सा पफ राइस. पर कुछ मांगे बिना वो लौटे द्वारका के लिए, अपने घर अपने स्थान के लिए. हालांकि उनकी गरीब पत्नी ने भेजा था इस इच्छा के साथ कि वो अपने धनी मित्र से कुछ मांगेंगे. पर भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो हर एक इच्छाओं को समझ लेते हैं. तो जब सुदामा ब्राह्मण लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया क्या बन गई है, महल. उनकी पत्नी जो कि फटे हुए कपड़ों में थी, सजी हुई थी महंगी साड़ी के साथ. तो सुदामा ब्राह्मण समझ गए ये सब संभव हुआ है उनके मित्र की कृपा के कारण. तो उन्होंने बड़े सुंदर श्लोकों में भगवान का गुणगान किया जिन्हें आप भगवतम के दसवें स्कंद में प्राप्त करते हो. तो वासुदेव विप्र जब योग बन गए, उन्होंने जब देखा कि महाप्रभु जी की खास कृपा से यह संभव हुआ है, तो उन्होंने बड़े सुंदर रूप से उन श्लोकों का उच्चारण किया. फिर आगे उन्होंने पूछा कि अब आपकी कृपा से मैं इतना खूबसूरत बन गया हूं, कहीं मैं घमंडित नहीं हो जाऊं. तो विनम्रता के भाव से रहने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है कि अगर आप हरि नाम का उच्चारण सदा करना चाहते हो तो क्या भाव की आवश्यकता है. नानपि तरोरपि अमानी न माना देना के देना नहीं सरे. ये महाप्रभु का आदेश कि अगर आप विनम्रता भाव से भक्ति की विधियों का पालन करोगे तो आप सदा हरि नाम कर सकोगे. तो अगर आप सोचोगे मैं इतना बड़ा भक्त हूं, इतना बड़ा नेता हूं, मैंने इतना प्रचार किया है, इतने भक्त बनाए हैं, तो भगवान अपनी कृपा को आपके आपसे ले लेंगे. भगवान कहते हैं कि अगर तुम विनम्रता के भाव से भक्ति करोगे तो सदा हरि का नाम कर सकोगे. पर अगर घमंड आ जाए, गौरव आ जाए, नाम महिमा उसके पीछे आप हो, तो ये हरिनाम आपके जीव से फिसल जाएगा. तो सदामा ब्राह्मण जो वासुदेव विप्र का प्रश्न था, मैं कैसे अपने आप को घमंडित होने से बचाऊं, तो महाप्रभु ने क्या कहा, चैन हरे कृष्णा एंड प्रीच द ग्लोरीज ऑफ हरे कृष्णा. सदा हरि का नाम लो और हरि के नाम की महिमा का प्रचार करो. इस प्रकार तुम कभी मुझे भूलोगे नहीं और मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा. तो प्रभुपाद जी इस लीला के तात्पर्य में समझाते हैं कि जिस प्रकार महाप्रभु ने वासुदेव विप्र का उद्धार किया और ये आदेश दिया, उसी प्रकार इस संसार के सारे भक्तों का उद्धार हुआ है. और सब भक्तों का कर्तव्य बनता है क्या कि वो घर घर जाकर क्या करें, प्रचार करें. तो नित्यानंद और हरिदास घर घर जाकर प्रचार कर रहे थे. कई घरों में वो गए, लोगों ने उनका स्वागत किया, बिठाया और कहा हमारा क्या सौभाग्य है आप आ गए हो हमें पवित्र बनाने के लिए. बड़े खुश हुए. पर कई घरों में वो गए, लोगों ने दरवाजा भी नहीं खोला. लोगों ने कहा ये निमाई तो पागल है, अभी दूसरों को भी पागल बना रहा है. हम लोग जब प्रचार में जाते हो, कई लोग प्रशंसा करते हैं, कई विरोध करते हैं. तो जब नित्यानंद हरिदास साहब को प्रचार कर रहे थे, कई घरों में तो उनका बड़े आदर से स्वागत हुआ, पर कई घरों में वो गए, लोगों ने कहा निमाई तो पागल हो गया है, अब दूसरों को भी पागल कर रहे हैं. जब निमाई पंडित ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया नवद्वीप में, जो हिंदू ब्राह्मण थे उन्होंने भी इसका विरोध किया. उन्होंने कहा निमाई तो हमारे धर्म की बेइज्जती करा रहा है, और उन्होंने मुसलमान काजी को शिकायत की. तो ये थी स्थिति. तो कई घरों में जब वो जा रहे थे नित्यानंद हरिदास, लोग कह रहे थे ये तो पागल हो गया है. हमने जब प्रयास किया था बस आंगन में प्रवेश करने के लिए, हमें अंदर नहीं आने दिया. शिवास आंगन जो कि हमारे मायापुर चंद्रद्वार मंदिर के निकट है, वहां महाप्रभु अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया. शिवास आंगन में ही काजी ने अपने सिपाहियों को भेजकर महाप्रभु के मृदंगा को तोड़ा था, भक्तों के मृदंगा को तोड़ा था. तो शिवा संगन में महाप्रभु जब कीर्तन करते थे 10-10, 12-12 घंटे एक साथ, और उस सभा में जो महाप्रभु के प्रिय भक्त थे उन्हीं को अधिकार था उपस्थित होने के लिए, दूसरों को नहीं। तो कई नवद्वीपवासी महाप्रभु के शत्रु बन गए। उन्होंने कहा, आप हमें अंदर आने नहीं देते कीर्तन देखने के लिए। तो कईयों ने उनका अपमान किया, कईयों ने कहा, आपने हमें अंदर आने नहीं दिया, हम तुम्हें अंदर आने नहीं देंगे, पागल हो तुम। तो महाप्रभु नित्यानंद हरिदास ने स्वीकार कर लिया। फिर कई घरों में वो जाते थे, लोगों ने कहा, ये जो हैं सन्यासी, सन्यासी नहीं हैं, ये हैं किसी चोर के प्रतिनिधि, वो आए हैं हमारे घर में ये देखने के लिए घर में क्या संपत्ति है, फिर चोर आएंगे रात को चुराने के लिए, मारो इन्हें, भगाओ भगाओ भगाओ। तो नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को जब कहा जाता था कि वो चोर के प्रतिनिधि हैं, चोर के जासूस हैं, वो हंसने लगते थे। तो ये मैंने इसलिए आपको उदाहरण दिए क्योंकि आप सब जो प्रचार करोगे, आप भगवद गीता मैराथन करोगे, भगवद गीता बांटने जाओगे, कई स्थानों में आप जाओगे, लोग आपका साथ देंगे, लोग कहेंगे, हाँ बड़ी शुक्रिया आप आए हो गीता देने के लिए, खास करके गीता जयंती के उपलक्ष। पर कई व्यक्ति आपका अपराध भी करेंगे, क्या धंधा करने आ जाते हो बार बार, है ना। और कई आपको ये भी कहेंगे, क्या तुमको कमीशन मिल रहा है क्या। पर हमें उस समय यही सोच लेना चाहिए कि अगर नित्यानंद हरिदास ठाकुर को कहा जा सकता है आप चोर के प्रतिनिधि हो, तो हमें अगर कोई डांट भी दे तो हमें क्या स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये प्रचार की जो सेवा है ये एक रूप से कठिन सेवा है, क्योंकि इस सेवा में हर व्यक्ति जिसे आप प्रचार करते हो वो साथ थोड़ी देता है। जैसे आप गीता मैराथन में जाओगे, टेबल लगाओगे, दुकान दुकान जाओगे, घर घर जाओगे, ये थोड़ी कि हर व्यक्ति कहेगा, हाँ स्वामी जी आ गए इस्कॉन मंदिर से, आइए बैठिए। हाँ सब ऐसा, अगर सब ऐसा स्वागत करें तो बड़ी अच्छी बात। तो जब आप प्रचार करने जाओगे ये नहीं कि हर व्यक्ति आपका स्वागत करेगा, कई आपका अपमान करेंगे। नित्यानंद हरिदास ठाकुर को तो कह रहे थे, मारो इन्हें, मेरे ख्याल से ये तो कोई नहीं कह रहा आज का। आप प्रचार के लिए जाओ कोई ये तो नहीं कहेगा मारो मारो इसे। पर नित्यानंद हरिदास जब घर घर जा रहे थे प्रचार करने के लिए, कईयों ने कहा मारो इसे मारो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप प्रचार करते हो ये नहीं कि हर व्यक्ति सहयोग देगा, पर जब भी हमें दृढ़ होकर प्रचार करना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं, निश्चय उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तनार्थ। भक्ति की विधियों में एक है दृढ़ होकर डिटर्मिनेशन के साथ हमें प्रचार करना चाहिए, और ये डिटर्मिनेशन का भाव, दृढ़ होने का भाव कैसे आता है, अच्छी साधना के द्वारा। अगर आप भजन क्रिया रखोगे अच्छी तरह, हरि नाम करोगे ध्यान से, अच्छी साधना रखोगे, तो फिर प्रचार का भी उत्साह रहेगा। इस श्लोक में नारद मुनि ने तीन महत्वपूर्ण विषयों पर बल दिया है, दयाया, फिर दूसरा क्या था, संतुष्ट। हमें संतुष्ट रहना चाहिए हर स्थिति में। ये नहीं कि हम सदा भौतिक इच्छाओं को प्रकट करते जाए. भौतिक इच्छाओं के विषय में क्या कहा गया है, आप कभी अपनी इंद्रियों को संतोष नहीं कर सकते. भागवत में आप महाराज याति की कथा पढ़ते हो, 10,000 सालों के लिए उन्हें पूरी सुविधा थी इंद्रिया तृप्ति की, परंतु में उन्होंने ये अनुभव किया कि इंद्रियों को आप कभी संतोष नहीं कर सकते. तो उन्होंने कहा, मैं एक लस्टी बकरा के समान था. प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं, कत्ल खाने के बाद बकरे को अगर इंद्रिया तृप्ति का मौका मिलता है उसका लाभ उठा लेगा, ये नहीं जानता कि मिनटों में मृत्यु आने वाली है. तो भौतिक कार्यों के द्वारा कभी भी आप अपनी इंद्रियों को संतोष नहीं कर सकते. इसलिए भक्त का यह भाव है कि अगर हमने संतुष्ट होना है हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए. तो नारद मुनि कह रहे हैं, तापमान सर्दी गर्मी ये सब हमें भोगना पड़ेगा. प्रभुपाद जी के जीवन को आप पढ़ो लीलामृत में, अब देखते हो कि प्रभुपाद जी को कितना संघर्ष करना पड़ा और प्रभुपाद जी कभी भी हिम्मत नहीं हारे. कभी उन्होंने कहा 20 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं, अब मेरे से यह कार्य नहीं हो रहा. प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था क्योंकि गुरु महाराज का आदेश है, प्रयास करेंगे तो महाप्रभु जी की कृपा से सफलता प्राप्त कर सकेंगे. तो उसी प्रकार हम सबको भी सर्वेंद्रिय पा इंद्रियों को संतुष्ट कर सकते हो अगर आप भक्ति की विधियों का पालन करो. तो ये जो प्रचार की सेवा है ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है. सब सेवाओं में आपको रसोई की सेवा हो सकती है, पुजारी की सेवा हो सकती है, पर सब सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण सेवा है प्रचार की सेवा. और प्रचार की सेवा का निचोड़ है ग्रंथों का उपदेश. प्रभुपाद जी ने बहुत ही परिश्रम के साथ इन ग्रंथों की रचना की. ग्रंथों के विषय में प्रभुपाद जी ने कहा वहां दो भाव होना चाहिए. एक हमें इन ग्रंथों को पढ़ना भी है. इन ग्रंथों को आप पढ़ोगे तो अपने आध्यात्मिक जीवन को ज्यादा मजबूत बना सकोगे. जैसे अगर आप अच्छी खुराक खाते हो तो संभव है अच्छा स्वास्थ्य रहेगा. तो उसी प्रकार अगर आप इन ग्रंथों को पढ़ोगे तो आपकी आध्यात्मिक बुद्धि तेज होगी. आध्यात्मिक बुद्धि तेज होगी तो माया का विरोध कर सकोगे. तो पहला भाव होना चाहिए कि हमने इन ग्रंथों को पढ़ना भी है. और दूसरा भाव क्या, हमें इन ग्रंथों को दूसरों को भी देना है. क्यों? क्योंकि इसमें दिव्य ज्ञान है. तो ये जो प्रचार की सेवा है, खास करके ग्रंथों के वितरण की सेवा, या जैसे आप बुक मैराथन बुलाते हो, ये सेवा क्यों की जा रही है? पतितों का उद्धार करने के लिए. अगर आज आप देख रहे हो कि इस संस्था के हैं उनका मूल कारण क्या है, इन ग्रंथों का प्रभाव. प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था कि इन ग्रंथों के माध्यम से लोगों का उद्धार होगा. इसलिए प्रभुपाद जी ने अनेक पत्रों में कहा, क्या, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स. ग्रंथों को बांटो. चाहे आपकी लाइफ एम्बिशप की सेवा हो, कॉलेज प्रीचिंग हो, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, हम सब का भाव क्या रहना चाहिए, लोगों को इन ग्रंथों के साथ जोड़ना. लोग इन ग्रंथों को पढ़ेंगे और तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है वही ग्रंथों का मैराथन अभी शुरू हो. इसमें हम सबको जुड़ना चाहिए. भगवान ऋषभदेव कहते हैं, एक अंधा व्यक्ति जब गलत रास्ते पर चल रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसके हाथ को पकड़कर उसे सीधे रास्ते में जोड़ देता है. तो उसी प्रकार भगवान ऋषभदेव कहते हैं, जैसे एक अंधे बुद्धिमान व्यक्ति अंधे व्यक्ति को गलत रास्ते से निकालकर ठीक रास्ते में जोड़ता है, उसी प्रकार एक जो भक्त है अंधे व्यक्तियों को जोड़ता है ठीक रास्ते में लाकर. दूसरे शब्दों में ये ग्रंथ लोग पढ़ेंगे और अपने जीवन को सुधारेंगे. तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, प्रभुपाद जी कहते थे दीज आर लाइक टाइमलेस बॉम्ब्स, किसी समय भी इनका प्रभाव आ सकता है. जो कह रहे थे, मैंने उनसे पूछा भक्त कैसे बने, तो कह रहे थे उनकी बहन ने एक गीता खरीदी थी 4 साल पहले, खोला भी नहीं कभी. 4 साल बाद किसने खोला, पढ़ना शुरू किया, उनका प्रभाव पड़ा. तो अनेक उदाहरण है. कई बार हमारे भक्त घर घर जाते हैं प्रचार करने के लिए. एक घर में पहुंचे दिल्ली में, जो जिस व्यक्ति ने कहा मैं अभी थोड़े घंटों में आत्महत्या करने वाला था, आप आ गए. फिर उसने गीता का उपदेश पढ़ना शुरू किया और अब अच्छा भक्त बन गया. तो इन ग्रंथों के प्रभाव से है, कोई एक श्लोक पढ़ेगा आगे कहा, एक श्लोक नहीं एक शब्द भी पढ़ेगा और समझेगा तो अपने जीवन को सुधारेगा. तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, ये सेवा का पालन किया जा रहा है किस लिए, पतितों का उद्धार करने के लिए. और अगर आप किसका उद्धार करना चाहते हो तो ये माध्यम. तो हम सबको उत्साह के साथ इस सेवा में जुड़ना चाहिए. रूपक गोस्वामी जी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य. भौतिक कार्य में आप देखते हो भौतिकवादी व्यक्ति अत्यंत उत्साहित हैं, किस लिए, भौतिक सुविधाओं के लिए. तो भक्त भी उत्साहित रहते हैं, क्यों नहीं, हम किसकी सेवा करें, भगवान की सेवा. नित्यानंद हरिदास ठाकुर जब प्रचार कर रहे थे, प्रचार करते करते कहां गए, जगाए मदाई को प्रचार किया उन्होंने, और मदाई ने क्रोधित होकर क्या किया, पत्थर फेंका जिसके द्वारा उनके माथे से खून बहने लगा. महाप्रभु पहुंच गए सुदर्शन चक्र के साथ, पर नित्यानंद ने रोक दिया. उन्होंने कहा यह है आज की स्थिति. वो आज लोग अत्यंत पतित हैं. प्रभुपाद जी जब पश्चिम देशों में गए, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड जंगल से गुजर कर जा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने हाथी शेर अनेक पशुओं को नचाया और जीप से हरिनाम का उच्चारण करवाया. तो इसी प्रकार श्री प्रभुपाद जी जब पश्चिम देशों में गए, उन्होंने देखा समाज की पतित स्थिति, प्रचार करके लोगों का उद्धार किया. जब प्रभुपाद जी अमेरिका बॉस्टन में पहुंचे थे तो वहां की स्थिति देखकर उन्होंने एक कविता लिखी जिसमें उन्होंने कहा हे भगवान, आप मुझे इधर ले तो आए हो पर कौन सुनेगा आपके संदेश को. फिर आगे उन्होंने कहा पर राधा रानी जी के असीम कृपा से हर कार्य संभव है. तो आज समाज की स्थिति क्या है, लोग अत्यंत पतित हैं, पर हमें उनका उद्धार करना है. जैसे आप सब का उद्धार कैसे हुआ, किसी ने आपको प्रचार किया है ना, किसी ने आपको निमंत्रण दिया, कोई आपके स्कूल में आया, कोई आपके कॉलेज में आया, कोई आपके घर में आया, आपने ग्रंथ पढ़ा इस प्रकार, और आपने हंसते हंसते निर्णय किया कि हमें जीवन को सुधारना है. तो जैसे आपका उद्धार हुआ है, आपने दूसरों का भी उद्धार करना है. जो वैष्णव है वो सबको सुखी देखना चाहता है, और अगर आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हो, और थोड़े समय पहले आप सबने हाथ उठाया था कि आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हो, अभी मन बदला तो नहीं, अभी भी प्रिय बनना चाहते हो, तो ये है माध्यम प्रचार करने का. कई बार भक्त पूछते हैं कोई शॉर्टकट नहीं है भक्ति के लिए, तो ये है शॉर्टकट, आप प्रचारक बना. तो ये जो ग्रंथों का मैराथन है, इसमें आप सब जुड़ोगे, कौन कौन जुड़ेगा, सब. तो ये अक्सर हम लोग रेलवे स्टेशन में जाते थे, और पिछले साल भी सुविधा नहीं थी रेलवे स्टेशन में जाने के लिए, जो दूसरे व्यापारी लोग हैं जो पैसा खिला देते हैं वो जा सकते हैं, पर जो भगवान का संदेश दे रहा है उनको नियम दिखाया जाता है। खैर, अनेक साधन है भगवान का प्रचार करने का। एक है शॉप टू शॉप, दुकान दुकान जाकर, और विदेशों में भी हमारे भक्त करते हैं। पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो ग्रंथों का मैराथन हो रहा है ये सारे विश्व में हो रहा है, सिर्फ भारत में ही नहीं। आप अगर इस समय लंदन, मॉस्को किसी मंदिर में जाओगे, आप देखोगे मंदिर बिल्कुल खाली है, कोई है ही नहीं। कहाँ है सारे भक्त? सड़कों में प्रचार करने के लिए, और सड़कों में प्रचार कर रहे हैं। और वहां इस समय अत्यंत ठंड का मौसम है, बॉम्बे में तो बड़ा हेवनली वेदर, बॉम्बे में तो दिसंबर में पूरे साल का सबसे अच्छा मौसम है ना। ज्यादा विदेशी लोग भारत दिसंबर में आते हैं, भारत में ये सबसे अच्छा मौसम है, पर विदेशों में ठंडा मौसम है। विदेशों में बर्फ है, -10, -20, साइबेरिया में -50, इतनी बर्फ थी कि हवाई जहाज भी उड़ नहीं पाए कल। पर उस वातावरण में भी इस्कॉन के भक्त घर घर जा रहे हैं, सड़कों में जा रहे हैं ग्रंथों को बांटने के लिए। क्यों? क्योंकि केवल एक ही भाव। प्रभुपाद जी ने कहा, अगर तुम मुझे संतुष्ट करना चाहते हो डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, और वो चाहते हैं कि लोगों का उद्धार हो। तो आप सब भक्तों से निवेदन है कि आप भी उत्साह के साथ प्रयास कीजिए इन ग्रंथों को बांटने के लिए। ग्रंथों के माप बांटने के अनेक माध्यम है। एक तो है 1-to-1, आप स्टॉप लाइट करो, घर घर जाओ, दुकान दुकान जाओ। दूसरा है, आप सब जिनकी जान पहचान है कोई व्यापारी से, बिजनेसमैन से, तो आप गीता स्पॉन्सर भी करा सकते हो। कई बार लोग हमें मिलते हैं जो कहते हैं हम गीता बांटना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सब सुखी बने, पर स्वामी जी हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप उन्हें कह सकते हो हम आपके बिहाफ पर आपकी तरफ से गीता बांट सकते हैं। लोग स्पॉन्सर करते हैं, स्पॉन्सरशिप के अलग फॉर्म है गीता दान। तो आप गीता बांट सकते हो स्कूलों में, जेलों में, हॉस्पिटल में। तो अनेक साधन हैं जिनके माध्यम से आप लोगों को जोड़ सकते हो। जैसे हमने स्पष्ट कहा, ये जो प्रचार की सेवा है कठिन सेवा है, क्योंकि ये कठिन सेवा है इसमें आपको सबसे ज्यादा कृपा भी प्राप्त होती है। जैसे बौद्धिक समाज में कठिन नौकरी है जो ज्यादा तनख्वाह मिलती है। हाँ, आप फैक्ट्री में काम करोगे और अगर कोले की माइन में काम करोगे तो 10 गुना ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, वहां ज्यादा खतरा है। तो जिस चीज में ज्यादा खतरा है, जो कार्य ज्यादा कठिन है उसमें ज्यादा कृपा भी मिलती है। तो खास करके आप सब भक्तों से निवेदन है, आप जुड़िए। जो हमारे गृहस्थ भक्त हैं वो भी अक्सर बड़े उत्साह से जुड़ते हैं इस मैराथन में, और जब भगवान देखते हैं कि ये भक्त प्रयास कर रहा है मेरे संदेश को आगे बढ़ाने के लिए, पतितों का उद्धार करने के लिए, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और भगवान ये भी कहते हैं जो प्रयास करते हैं मुझे मेरी सेवा करने के लिए, अगर उनमें कुछ कमी भी हो तो मैं उसे दूर कर देता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु जी का आदेश है, प्रभुपाद जी की हार्दिक इच्छा थी, जब प्रभुपाद जी पश्चिम देश में गए उन्होंने भक्तों को कहा डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। जो अमेरिकन भक्त थे उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कैसे ग्रंथों को बांटा जाएगा, कोई अंदाजा नहीं था। पर प्रभुपाद जी बार बार कह रहे थे डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। किताबों का छापने का लाभ जब है जब आप आगे इनको बांटोगे भी, अगर केवल छापोगे और गोडाउन में रखोगे तो क्या फायदा। तो जो अमेरिकन भक्त थे वो सोच रहे थे कैसे ग्रंथों को बांटा जाए, क्योंकि इतिहास में सबसे पहली बार कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ, लोगों ने गीता भगवतम को देखना शुरू किया, पर आगे बांटना उन लोगों को जिनका बैकग्राउंड है क्रिश्चियन और मुसलमान, ये तो बड़ा कठिन काम था। पर भक्तों को पूरा विश्वास था, प्रभा जी कह रहे थे हमें दिमाग लगाने दो। तो दो भक्त हरी नाम से लौट रहे थे सैन फ्रांसिस्को में, और रास्ते में रुके पेट्रोल लेने के लिए गाड़ी में, $10 का पेट्रोल लिया उन्होंने। और फिर एक भक्त का ने सोचा मैं $10 देने की बजाय ये कृष्णा बुक छप के आई है जापान से, ये क्यों नहीं बेचने की कोशिश करूं। तो उसने उस पेट्रोल पंप के मालिक से कहा $10 देने की बजाय कैन आई गिव यू दिस बुक। तो उस व्यक्ति अमेरिकन था मालिक, तो उसने कृष्णा बुक को देखा, बड़ा प्रभावित हुआ, ओके आई बाय दिस। तो ये पहली किताब उन्होंने बेची थी सड़क में। फिर भक्तों को लगा अगर ये एक आदमी ले सकता है तो और क्यों नहीं ले सकते, तो वो इस प्रकार प्रयास करते गए। और फिर जो हुआ इतिहास, आज लाखों की संख्या में विदेशों में भी लोग इन ग्रंथों को ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों में है असली शिक्षा। तो आप सबसे निवेदन है आप जुड़िए इस सेवा में। ये जो आज का श्लोक पढ़कर सुनाया था, ये श्लोक आप सबको कंटस्ट कर लेना चाहिए। कंटस्ट करोगे तो क्या है, दयाया सर्वभूतेषु नारद मुनि कह रहे हैं भगवान को संतुष्ट करना है तो तीन चीजों की आवश्यकता है, और ये तीनों विधि बहुत अवश्य है। एक है दया प्रचार, दूसरा है संतुष्ट। संतुष्ट रहो, हम कई बार भक्ति में जुड़ जाते हैं बस संतुष्ट नहीं रहते, हमें ये चाहिए वो चाहिए, मोबाइल चाहिए ये चाहिए वो चाहिए। मोबाइल ही नहीं चाहिए हमें, तो सबसे अच्छा मोबाइल चाहिए। तो संतुष्ट रहो, फिर सर्वनिंद मन और बुद्धि को संतुष्ट में लाओ, कंट्रोल में लाओ। ये नहीं कि आप इंद्रियों के दास है हो और आप भक्ति भी चाहते हो। भक्ति चाहते हो तो माया को त्यागना पड़ेगा। जब सनातन गोस्वामी ने उस ब्राह्मण ने संतुष्ट करके एक परस पत्र प्राप्त किया था, फिर उसे पता लगा ये परस पत्र से भी ज्यादा कीमती कोई चीज है, तो गए सनातन गोस्वामी के पास, ये परस पत्र से ज्यादा कीमती कोई चीज है, क्योंकि अगर ये सबसे कीमती वस्तु थी तो आपने कच्चे के कूड़े के डब्बे के नीचे क्यों रखा था। तो सनातन ने कहा है पहले ये पत्र परस पत्र को फेंको, फिर उन्होंने क्या दिया, हरि नाम। तो अगर हमें हरि नाम चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, भगवान के धाम लौटना चाहते हो, वैकुंठ धाम लौटना चाहते हो जहां की किसी प्रकार का क्लेश नहीं है, आपको क्या करना है, मन बुद्धि इंद्रियों को वश में लाना है, जो संभव है अजी साधना के माध्यम से। तो चाहे आप गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो या ब्रह्मचारी, महाप्रभु जी का आदेश सबके लिए, बोलो कृष्णा बाजो कृष्णा करो कृष्णा सिखा। और आज कलयुग इतना गहरा है, अब बोलोगे तो लोग भूल जाएंगे। प्रभुपाद जी ने कहा आप किसी को संदेश दोगे वो सुनेगा भूल जाएगा, पर अगर आप ग्रंथ दोगे तो वो पढ़ेगा फिर से पढ़ेगा और दूसरों को देगा पढ़ने के लिए। तो ये ग्रंथों के विद्यन की सेवा में जुड़िए, आप सब निमित्त मात्रम बनिए भगवान के संदेश को आगे पहुंचाने के लिए। और ये मैराथन किस लिए किया जा रहा है, भगवान की प्रशंसा के लिए। और जब भगवान देखते हैं ये भक्त प्रयास कर रहे हैं मेरे संदेश को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं और बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा आप ये सेवा कर सको। आपसे तो ये निवेदन है उषा के साथ सेवा में सब जुड़िए और दूसरों को भी जोड़िए। हरे कृष्णा। राजहरी वांट टू से फ्यू वर्ड्स, हाँ few words to encourage people. Say a few words.